की थी इस विषय पर कि वैष्णवों का गुणगान करना या उनकी कार्यकलापों को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ कल हमने श्रीपद मध्वाचार्य उनके कुछ जीवन पर प्रकाश डाला था या उनके चरित्र का वर्णन किया था और उनके जीवन की कुछ लीलाओं का भी हमने श्रवण किया था। तो आज और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज समय बहुत कम है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जैसे कि हमने कल सुना कि किस प्रकार एक निडर और बड़े विख्यात वैष्णव सिद्धांत के प्रचारक थे, है ना, श्रीपाद मध्वाचार्य। और उनका केवल एक ही एम था कि भगवान की जो महत्ता है या वैष्णव सिद्धांत को वो स्थापन करना चाह रहे थे। और ये इच्छा बल्कि उनकी नहीं थी, ये इच्छा तो स्वयं भगवान की ही थी। हाँ, विष्णु ने, हमने सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु वायुदेव को ऑर्डर देते हैं और वायु अपीयर हो जाते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य के रूप में, और किस प्रकार मध्वाचार्य का बचपन गुजरता है और कई वो लीलाएं करते हैं जो सामान्य बालक के लिए असंभव हैं। फिर कैसे 10 साल में श्रीपाद मध्वाचार्य सन्यास ले लेते हैं और सन्यास के बाद किस प्रकार से वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और मायावाद का खंडन करते हैं और अपने गुरु से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और साथ साथ हमने ये भी सुना कि किस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य जो मायावाद के सिद्धांत के जो फिलोसोफर्स हैं, आचार्यज हैं, उनका खंडन करते हैं, बौद्ध दर्शन का खंडन करते हैं और अपना जो तत्व है द्वैताद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। किस प्रकार से श्रीपाद मध्वाचार्य का जीवन गुजरता है मेनली प्रीचिंग एक्टिविटीज़ में, तो उसके साथ साथ श्रीपाद मध्वाचार्य हर समय भारत के अलग अलग स्थानों में, विशेषतः दक्षिण भारत के कई स्थानों में यात्रा करते थे। और उनका केवल एक ही उद्देश्य था, उडुपी के बाद उन्होंने दक्षिण भारत केरला और कर्नाटका वगैरह उन स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया और उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि लोगों को मुक्त कराना मायावाद जो दर्शन है उसके चंगुल में जो लोग फंसे हैं उनको उनसे मुक्त करा देना। तो इस प्रकार से जो रामानुजाचार्य मध्वाचार्य है वो ट्रैवल करते थे और कुछ दिनों के बाद सन्यास के 7 साल के बाद मध्वाचार्य बहुत शक्तिशाली थे। और वही नहीं, उनके जो भी शिष्य थे वो भी सारे शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे और शक्तिशाली थे। तो आज से केवल बड़े नहीं थे, हाँ बहुत ही उनमें शक्ति थी। तो संन्यास के 7 साल के बाद श्रीपाद मध्वाचार्य ने निर्णय लिया कि मुझे उन्होंने 7 साल तो प्रचार किया सन्यास के बाद काफ़ी तीव्रता से, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी मुझे अपने जो इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्रील व्यासदेव उनसे मिलने जाना है। हाँ, तो उन्होंने अपने प्रचार कार्य के दौरान भगवद गीता पर कमेंट्री लिखी थी, हाँ, जिसका नाम था भगवद गीता पर भाष्य लिखा था, जैसे प्रभुपाद ने लिखा। प्रभुपाद का क्या है, भक्ति वेदांत भाष्य या भक्ति वेदांत तात्पर्य, भगवद गीता एज इट इज़। तो तो वैसे ही मध्वाचार्य का जो भाष्य था उसका नाम था हरि गीता भाष्य, हरि गीता भाष्य मतलब हरे का जो गीत है सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवद गीता को क्या कहा जाता है? सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत, भगवान ने गाया हुआ गीत। किसके लिए गीत गाया? अर्जुन के लिए। देखो कितनी बड़ी समस्या में अर्जुन था, कृष्ण उनको भजन सुना देते हैं, गीत सुना देते हैं, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ये अद्भुत है, हम भगवान के द्वारा हम समझे। तो मध्वाचार्य जी ने इसके ऊपर टीका लिखी थी, भगवद गीता पर भाष्य लिखा था, और वो चाहते थे कि मैं अपने जो ओरिजिनल जो भगवद गीता प्रदान करने वाले जो श्रील व्यास देव हैं उनको वो मैं प्रेजेंट करूँगा। तो उसके साथ साथ आपने ये जो पांडुलिपि की एक जो कॉपी है उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर क्या नाम था, अच्युत प्रेक्ष को दी। अच्युत प्रेक्ष जो उनके गुरु महाराज थे उनको एक वो कॉमेंट्री की एक बुक दी भगवद गीता की, और एक कॉपी अपने साथ लेकर मध्वाचार्य दक्षिण भारत से हिमालयाज की ओर आते हैं पैदल। तो अपने कई सारे शिष्यों को लोग लेकर वो निकलते हैं और बद्रिक आश्रम में प्रस्थान करते हैं, जहाँ लॉर्ड बद्रीनाथ के रूप में निवास करते हैं कृष्ण, नर नारायण ऋषि के रूप में जो अर्जुन और जो कृष्ण हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि 10,200 फीट ऊंचाई पर है वो जो स्थान है बद्रिक आश्रम, समुद्र सपाटी से समुद्र की जो लेवल है वहाँ से 10,200 फीट ऊंचाई पर है। तो इतना ऊंचे स्थान में वो अपने एक शिष्य को साथ लेते हैं, कुछ और छोटे थोड़े ब्रह्मचारी को लेते हैं साथ, जिनमें से एक थे उनके एक बहुत नज़दीक के शिष्य थे जिनका नाम था सत्य तीर्थ। हम देखेंगे सत्य तीर्थ को लेते साथ और वो यात्रा करते हैं बद्रीनाथ की। तो वहाँ 5 बद्रीज हैं। बद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि बद्री के एक ट्री का नाम बद्री है, जो बेद या बेर कहते हैं या बद्री कहते हैं उसे। तो वहाँ वो 5 प्रकार की जो बद्री हैं उनमें से एक है विशाल बद्री है, उत्तर बद्री है, बद्री मीन्स एरिया का नाम। तो श्रीपद मध्वाचार्य अपने सारे शिष्यों को बद्रीनाथ के वहाँ रुकाते हैं और वहाँ से वो आगे निकलते हैं उत्तर बद्री की ओर, जहाँ जैसे मैं कल कह रहा था कि जो शम्याप्रास नाम का एक स्थान है हिमालयस की सबसे ऊंचाई स्थान, ऊंची जगह पर जहाँ कोई भी सामान्य शरीर से नहीं जा सकता, जहाँ व्यासदेव अपने का कुछ शिष्यों के साथ वहाँ निवास करते हैं। तो मध्वाचार्य उस स्थान के लिए निकलते हैं और जब वो बद्रीनाथ में थे उस मंदिर में, आज भी लोग जाते हैं बद्रीनाथ, तो वहाँ मंदिर में जब थे तो वो क्या करते हैं, मंदिर लॉक कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, और अंदर लॉर्ड बद्रीनाथ हैं और नर नारायण ऋषि के डिटीज हैं उनको वो एक, और शंकराचार्य ने भी शालिग्राम शिला वो लेके गए थे। शंकराचार्य बद्रीनाथ में जब गए थे तो उन्होंने भी, शंकराचार्य ने भी अपना मठ स्थापित किया है वहाँ, और शंकराचार्य ने जो शालिग्राम शिला भी वहाँ रखी हुई है। तो जब मध्वाचार्य गए तो उन्होंने अपना गीता का भाष्य खोला और वो उनको पढ़ के सुनाया भगवान को, जो भगवान की जो भगवद गीता है। लॉर्ड बद्रीनाथ मीन्स कृष्ण है, कृष्ण का वो डीटी है उस फॉर्म में। जैसे कहा जाता है कि 4 मेन जो स्थान हैं भगवान अलग अलग जगह अलग अलग कार्य करते हैं, या फिर आचार्य ऐसा भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भगवान केवल अपने हाथों को, अपने हाथों की मुद्रा चेंज करते हैं तो उस स्थान में नया उनका नाम होता है। जैसे भगवान यहाँ हैं वृंदावन में हैं, ऐसे है वहाँ आता है ना बांसुरी बजा रहे, तो कृष्ण कहलाते हैं या बंशीधारी कहलाते हैं। वही कृष्ण जब महाराष्ट्र में अपनी पत्नी रुक्मिणी के पीछे भागते हैं तो महाराष्ट्र में वो ऐसे खड़े हैं, यहाँ आते हैं तो उनको वहाँ विट्ठल कहा जाता है। और वही कृष्ण जब आप सोचो तिरुपति में होते हैं, हाँ कैसे है तिरुपति के, मैंने नहीं देखा, बिल्कुल सोने से ढके हुए हैं, ऐश्वर्य में है, तिरुपति बालाजी।
हाँ,
तो अलग अलग मुद्रा में कृष्ण अलग अलग स्थानों में रहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि चार धाम है, एक है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा तिरुपति रामेश्वरम। शायद रामेश्वरम, रामेश्वरम। तो ये चार धाम है। तो कृष्ण अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीजें करते हैं। भगवान को भूख लगती है तो वो जगन्नाथपुरी में भोग खाते हैं। कितना खाते हैं? कहते हैं कि कृष्ण भोजन कहाँ करते हैं? जगन्नाथपुरी में। हाँ, और कृष्ण स्नान वगैरह तैयार ड्रेसिंग करते हैं द्वारका में, और वो रेस्ट करते हैं बद्रीनाथ में, और पूजा अर्चना कहाँ करते हैं? रामेश्वरम में। ऐसे इन समथिंग डिवोटीज कहते हैं। हाँ, ऐसे स्नान में समथिंग। हाँ, रामेश्वर,
बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और
जगन्नाथपुरी। वृंदावन तो टॉप मोस्ट है। वृंदावन क्या है? सर्वोच्च है। वो अभिन्न है वृंदावन और मायापुर। इस प्रकार से जो ये चले जाते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, और भगवान को ही अपना भाष्य पढ़ के सुनाते पूरी रात। हाँ, कई रातें, और बहुत विरह में। और कहते कि मैंने अपने जो भी योग्यता है उसके अनुसार ही कॉमेंट्री लिखी है। हाँ, और भगवान अपीयर हो जाते हैं, और वह व्यासदेव भी प्रकट हो जाते हैं। और कहते व्यासदेव कहते कि हे श्रीपाद मध्वाचार्य मध्वा, तुम मेरे आश्रम में चले आना। तो बद्रिक आश्रम से जैसे लोग अभी बस से जाते हैं वहाँ, उससे भी कई दूर। हाँ, कई दूर वहाँ व्यासदेव निवास करते हैं आज भी अपने शिष्यों के साथ। तो जब श्रीपाद मध्वाचार्य निकले थे वहाँ, तो उनके शिष्य सत्य तीर्थ उनके साथ थे। तो उन्होंने उनको सहन नहीं हो रहा था विरह कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को छोड़ूं। तो कहते नहीं, मैं भी अपने आपके साथ आऊँगा। तो कहते तुम्हें नहीं चला जाएगा ऐसे भयानक स्थान पर। तो ये पूरे प्रयास के साथ उनका शिष्य उनके साथ साथ चलता है, लेकिन कुछ दूरी पे देखता है कि हवा भी नहीं आ रही है वहाँ। हवा भी बंद हो जाती है बहना, और धीरे धीरे तो देखा कि उससे चला भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये कहते मध्वाचार्य कहते कि आप तुम नहीं आ सकते, तुम वापस चले जाओ अपने उस स्थान में जाके रुको। तो मध्वाचार्य क्या करते हैं, फूक लगाते हैं, और उनका शिष्य उड़ते हुए हैं सीधा बाकी शिष्यों के बीच आनंद मठ में जाके गिरता है वहाँ बद्रिकाश्रम में, बिल्कुल सेफ, कोई उसको चोट नहीं पहुँचती, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये जाते हैं ऊंचे स्थान पर जहाँ हिमालय को पार करके वो पहुँचते हैं। इतना नेचुरल और कम्फर्टेबल स्थान था कि जहाँ पेड़ पौधे सरोवर पंछी और सारे ऋषि मुनिज, उस एरिया में केवल साधु जी नजर आ रहे हैं ऋषि मुनिज, कहा वेदों के द्वारा स्तुति हो रही है, कहा भागवतम पढ़ी जा रही है, तो और चांटिंग कर रहे थे अलग अलग मंत्रास। तो उस समय मध्वाचार्य इस वातावरण को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, और वो चलने लगते हैं, और देखते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर, इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर व्यासदेव को, हट्टे कट्टे लंबे तगड़े। हाँ, शक्तिशाली व्यासदेव भी काफ़ी शक्तिशाली थे। तो व्यासदेव को देखते हैं तो व्यासदेव बहुत खुश हो जाते हैं मध्वाचार्य को देखकर, और मध्वाचार्य का आलिंगन करते हैं, और कहते हैं मध्वाचार्य उनसे प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी आप रहेंगे कृपा करके आप अपने साथ मुझे रखिए हर समय, और मैं आपके थॉट्स में हमेशा रहना चाहता हूँ, आपके विचारों में लीन होना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों के लिए वो वहाँ रहते हैं, और फिर इनसे काफ़ी शिक्षा ग्रहण करते हैं व्यासदेव से, और एक कॉमेंट्री लिखते हैं वहाँ बैठे बैठे ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो वेदांत सूत्र के ऊपर। हाँ, जो ब्रह्म सूत्र भाष्य है उसका निर्माण करते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र पर जो टीका की है शंकराचार्य ने, जिसका नाम क्या है, शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य की जो टीका है, और मध्वाचार्य ने जो टीका दी जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र भाष्य, वो ब्रह्म सूत्र पर वो भाष्य लिखते हैं, और फिर वो वापस चले आते हैं अपने स्थान पर और उस वेदांत सूत्र में वो बिल्कुल जैसे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत हैं, संबंध अभिधेय और प्रयोजन उसका वर्णन करते हैं मध्वाचार्य सिस्टमैटिकली। ब्रह्म सूत्र भाष्य
संबंध प्रयोजन
अभिधेय क्योंकि देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु तो उसके बाद वो वापस आते हैं वहाँ से, और आते आते वर्णन आता है कि वो ओरिसा से और कई स्टेट से गुजरते हैं। तो गुजरते गुजरते एक दिन नवदीप में पहुँचते हैं मध्वाचार्य। कितने साल पहले? 800 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। महाप्रभु आने से पहले नवदीप धाम में ये पहुँचते हैं, मध्वाचार्य वहाँ निवास करते हैं, और इसका वर्णन आता है नवदीप धाम महात्मा ने जो ग्रंथ लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें वर्णन आता है कि कैसे मध्वाचार्य आए थे नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से 300 साल पहले। और जब ये एक स्थान में रेस्ट कर रहे थे मध्वाचार्य नवदीप धाम में, तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि हे मध्वा, हाँ मैं तुम्हारे संप्रदाय को स्वीकार करूँगा, हाँ लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि तुम ये जो वैष्णव सिद्धांत है इसका प्रचार करो, और जो भगवद गीता की शिक्षा है या भगवद गीता का जो सार है हाँ उसको स्थापित करो, लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलना कि मैंने ये चीज़ें तुम्हें रिवील की हैं, तो ये तुम किसी को भी मत बताना। मध्वाचार्य को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आने वाला हूँ हाँ कुछ सालों के बाद, और मैं जो चार संप्रदाय हैं उनमें से आपके संप्रदाय को स्वीकार करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके संप्रदाय को स्वीकार करते हैं हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना की। और आगे चलते हुए और क्योंकि जो भी रास्ते में पंडित और विद्वान मिलता था, मध्वाचार्य जहाँ भी रुकते थे वहाँ डिबेट शुरू कर देते थे, और हर एक पंडित और विद्वान व्यक्ति को हराते हुए मध्वाचार्य आगे आगे निकलते थे। तो ऐसे कई जो परंपरा हम पढ़ते हैं भगवद गीता में, वहाँ उसमें दो तीन आचार्यज हैं जो उस ट्रैवलिंग के दरमियान उनको उन्होंने भक्त बनाया था, बल्कि वो कट्टर मायावादी थे, उनको उन्होंने वैष्णव बनाया और आगे चलकर यही लोग उनके शिष्य बने या आचार्य बने आगे उसी संप्रदाय के। तो उनमें से एक शिष्य थे जिनका नाम था नरहरि, नरहरि तीर्थ जो आगे उनका संन्यास हुआ। तो नरहरि थे तो जो मध्वाचार्य चाहते थे कि ये चले जाए वहाँ ओरिसा चले जाए, और ओरिसा जाकर भगवान राम की जो ओरिजिनल डीटीज़ है वो लेके आ जाए। तो इनको नरहरि को भेजते हैं, तो आप देखेंगे कि एक डीटीज़ भगवान ने स्वयं प्रदान की थी जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता देवी के साथ अयोध्या में रहते थे। तो उस समय एक ब्राह्मण अयोध्या में रहता था जो रोज तभी प्रसाद लेता था जब वो सबसे पहले श्री राम का दर्शन करता था। बिना राम को देखे बिना वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, और भगवान राम एक हफ्ते के लिए चले जाते हैं ऐसे और कुछ दिन के लिए हाँ, तो वो फिर प्रसाद नहीं पाता था, अब भूखा रह जाता था बिल्कुल निर्जला। तो इस प्रकार से जब भगवान राम को ये पता चलता है कि किस प्रकार ये एक ब्राह्मण है जो बड़ा ही तपस्वी है और मुझे या मेरा दर्शन किए बिना वो प्रसाद या अन्न स्वीकार नहीं करता है, तो भगवान राम बहुत दयाद्र हो उठते हैं, और साथ साथ भगवान राम कहते हैं फिर लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, क्योंकि भगवान राम के पास अपना एक ड्यूटी था, स्वयं का एक विग्रह था, तो उस ब्राह्मण को देते हैं कि लक्ष्मण को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ड्यूटी क्या करो तुम लक्ष्मण को दे दो, और लक्ष्मण को देते कहते कि उस ब्राह्मण को दे दो। तो वो कई सालों के लिए वो ब्राह्मण उसकी पूजा करता है, और फिर उसके बाद वो जो ब्राह्मण है उस विग्रह को हनुमान जी को देता है, फिर हनुमान जी उनकी पूजा करते हैं। फिर हनुमान जी जब भीम को मिलते हैं तो उस समय भीम को देते हैं, आप जानते हैं ना कैसे मिले थे हनुमान, हाँ भीम जी को, तो उस समय ये जो विग्रह भीम को देते हैं, और भीम के बाद जो सबसे आखिरी राजा आते हैं पांडव वंश में जिनका नाम था क्षेमकांत, उनको वो सीताराम का ड्यूटी मिलता है, और वो राजा ओडिशा के राजा थे एक गजपति राजा, वो क्या करते हैं ओडिशा के जो आज भी गजपति राजा है ओडिशा में जगन्नाथपुरी के आज भी राजा हैं, आपने देखा जब रथ यात्रा होती है तो उस समय जगन्नाथ जी तब तक नहीं हिलते, रथ तब तक नहीं हिलेगा जब तक वो राजा नहीं आएगा, हाँ सबसे महान सेवक है जगन्नाथ जी के, हाँ वो आते हैं और झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के लिए स्वीपर, अभी भी उनको पालखी में लेके आते हैं सारे पंडाज और वैष्णवाज जाकर, और गजपति किंग राजा गजपति अलग अलग नाम होता है उनका, ये गजपति राजा टाइटल है क्योंकि, और वो राजा की खासियत क्या है, जो भी राजा होता है उनको कोई पुत्र नहीं होता, हाँ जो डायनेस्टी आई है आपको हिस्ट्री कभी हम चर्चा कर सकते जगन्नाथ के ऊपर डिटेल में, तो जब जगन्नाथ जी की स्थापना की थी इन्होंने कौन से राजा इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न ने जब स्थापना की तो अलग अलग लोगों को उन्होंने पूजा में लगाया, वो काफ़ी लंबा हिस्ट्री है, तो भगवान से उन्होंने एक वर मांगा कि हे जगन्नाथ मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे कोई भी संतान ना हो मेरी पीढ़ी में, तो भगवान कहते क्यों ऐसा, लोग तो संतान मांगते हैं ऐश्वर्य मांगते हैं, लेकिन ये राजा अद्भुत है जिन्होंने जगन्नाथ जी को लाया इस जगत में इंद्रद्युम्न राजा ने, और जगन्नाथ जी का टेम्पल स्थापित करने के बाद भगवान से कहा कि मुझे कोई संतान ना हो, क्यों, क्योंकि कोई भी मेरी संतान होगी तो वो अपना वर्चस्व दिखाएगी, भगवान जगन्नाथ मंदिर देखा कितना भव्य है कि ये मेरा है, और उसके धन और ऐश्वर्य का उपभोग करेगा वो संतान और उसका मिसयूज करेगा, इसलिए कहते मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, तो उन तब से हाँ कई हजार साल से ये परंपरा ऐसी आई है, जब वो राजा शरीर छोड़ने लगता है तो दूसरा के पुत्र को दत्तक लिया जाता है, दत्तक समझते ना आप, वारस क्या गोद लिया जाता है, हाँ गोद लेते हैं दूसरे को और वो फिर राजा होता है, फिर उसको भी नहीं होता कोई संतान जगन्नाथ की कृपा से, फिर वो दूसरों को लेते, तो इस प्रकार से ये हाँ चला आ रहा है, तो राजा का महल जगन्नाथ मंदिर के पास ही है वहाँ जगन्नाथपुरी में, तो आज तो भगवान जगन्नाथ जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को भी जगन्नाथ जी के ये प्रिय सेवक जो राजा हैं बहुत प्रिय थे, जैसे राजा प्रताप रुद्र थे चैतन्य महाप्रभु के समय, तो इस प्रकार से एक बार क्या होता है कि राजा शरीर त्यागता है जगन्नाथपुरी का, और उनके उसमें कोष में ये सीताराम का ड्यूटी था, तो ये जो नरहरि भेजे थे मध्वाचार्य ने, तो देखा कि जो राजकुमार है वो अभी बड़ा नहीं था राज्य को संभालने के लिए, तो बहुत छोटा सा बालक था, बिल्कुल बहुत छोटा बालक गोद में रहता था, तो जब कोई राजकुमार नहीं होता तो उस कुछ समय के लिए राज्य चलाने के लिए वैदिक परंपरा ऐसी थी कि एक हाथी को बाहर छोड़ देते थे उसके सुंड में माला देकर, और वो जाता था और जिस व्यक्ति के गले में डालता था माला तो वो व्यक्ति राजा होता था उस समय, हाँ कुछ दिन जब तक वो राजकुमार बड़ा नहीं होता, तो ये जो नरहरि वैसे ही वैष्णव थे, तो वो हाथी सही जगह पहुंचा, हाथी घूमते हुए नरहरि जहाँ थे इनके शिष्य उनके गले में माला डाली और सारे लोगों ने बड़े स्वागत के साथ इनको राजा बना दिया ओडिशा का, और फिर कई साल ये राजा रहे, और जब वो बालक राजकुमार बड़ा हो गया वो जब राजा बन सकता है तो उस समय इन्होंने अपना पद त्यागना चाहा और बड़े बिना किसी आसक्ति के त्याग दिया, क्योंकि त्यागना बड़ा कठिन है, अटैच हो जाते हैं हम किसी चीज़ पर अपनी हैबिट्स हाँ या फिर किसी सेवा से या किसी चीज़ से, तो बहुत कठिन होता है, इसलिए कहते हैं अटैचमेंट इज़ द कॉज ऑफ मिजरी, आसक्ति हमारे दुखों का कारण है हृदय में। तो इन्होंने बिना किसी अटैचमेंट के उस चीज को, अपने इतने बड़े पद को छोड़ा और उस बालक को राजा बना दिया। तो उस समय वो जो राजकुमार था, उन्होंने देखा कि इन्होंने इतनी अच्छी सेवा की है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मैं गिफ्ट करूं, बल्कि ये नररी ले सकते थे भगवान की ड्यूटीज को, ये तो राजा थे, लेकिन नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मुझे वो ड्यूटीज चाहिए सीताराम की जो भगवान राम ने दी है। तो उस ड्यूटीज को लेते हैं और श्रीपद मध्वाचार्य अपने जो गुरु हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। श्रीपद मध्वाचार्य बहुत खुश होते हैं और आज भी जब उडुपी में जाते हैं तो वहाँ वो ड्यूटीज का दर्शन कर सकते हैं। इतने पुराने ड्यूटीज है भगवान राम के, जो भगवान राम ने स्वयं ही दी थे। तो उनको मूल राम कहा जाता है उस ड्यूटीज को। मूल राम मतलब ओरिजिनल राम, ओरिजिनल राम, हाँ मूल राम। तो इस प्रकार से उनके शिष्य किसी भी प्रकार का टास्क, किसी भी प्रकार से मध्वाचार्य को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। और कोई किसी भी प्रकार की वो सेवा अपने शिष्यों को देते थे, ऐसे थे। कभी कभी वर्णन आता है कि मध्वाचार्य को बहुत ये आ जाता था, तो अपने 15-20 शिष्यों को इकट्ठा करते थे और कहते थे कि चलो अभी हम कुश्ती खेलते हैं शिष्यों को लेकर, और शिष्यों के साथ वो कुश्ती खेलते थे। कुश्ती जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, तो एक साथ 10-10 शिष्यों को उल्टा वो डाल देते थे सर के ऊपर, इतना शक्ति होता था मध्वाचार्य में। तो उनके शिष्य डरते थे अपने गुरु की इस बॉडीली स्ट्रेंथ से, और इतने वो अमेजिंग थे। तो ऐसे ही कई दिन उन्होंने उडुपी में बिताए। और 1285 की बात है कि एक दिन शाम के समय श्रीपद मध्वाचार्य निकले रात को बाहर, चलते चलते उन्होंने अपने मन में ही श्लोकों की रचना की, जिसको आज कहा जाता है द्वादश स्तोत्रम कहते। 12 श्लोक उन्होंने बनाए। रात को जब अपने मठ से बाहर निकले, समंदर के किनारे चले, चलते जा रहे थे वो समंदर के किनारे, तो मन में ही वो भगवान की स्तुतियाँ करने लगे, 12 श्लोकों की रचना की, तो उसको द्वादश स्तोत्रम कहते हैं। तो आज भी ये परंपरा है कि जो मध्वाचार्य के वो 12 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका उच्चारण उनके अनुयायी रेगुलर करते हैं, और इवन मध्वाचार्य करते थे अपने डेली एक्टिविटीज में वो 12 श्लोक जो भगवान की स्तुतिज हैं। तो ऐसे जब चलते थे तो जब गए वो एक समंदर के किनारे, तो उस समय दूर से उन्होंने देखा कि एक जहाज, बहुत बड़ा जहाज आया था और वो फंसा हुआ है वहाँ समंदर में। तो जैसे ही वो लोग वहाँ से चिल्ला रहे थे और वो डूबने वाला था, ये नहीं हेल्प करते हैं तो डूब जाता कुछ समय के बाद। तो मध्वाचार्य क्या करते हैं, अपना जो सन्यासी थे, हाथ में डंडा था उनके, अपना ये उत्तरिया निकालते हैं और डंडे को बांधते हैं और उनको दिशा दिखाते हैं कि इस ओर आप उतर सकते हैं, आपके जो जहाज है ये सेफ प्लेस है, यहाँ आप अपने जहाज को ला सकते हो और तो आप इजीली आ सकते हो। बल्कि वो जहाज हिल ही नहीं रहा था, डूबने वाला था। तो ये क्या करते हैं, वायु के देवता हैं, ये अचानक हवा फूंकते हैं तो स्टॉर्म, तूफान आने लगता है, और उस तूफान से वो नाव बिल्कुल ठीक से किनारे में आती है, और काफ़ी सारा सामान और काफ़ी सारे लोग थे, और वो सारे लोग द्वारका से आए थे। जब मध्वाचार्य के पास वो उतरते हैं, कैप्टन वगैरह प्रणाम करते हैं और कहते कि आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, तो मध्वाचार्य कहते तो भगवान की कृपा है, लेकिन वो कहते आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या दे गिफ्ट, क्या चाहते आप बताइए, सब प्रकार से हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो मध्वाचार्य, क्योंकि भक्त कोई चीज़ भौतिक नहीं चाहता, कृष्ण जी जो संबंध नहीं है, तो मध्वाचार्य क्या कहते हैं, ओ आप लोग द्वारका से आए हैं तो मुझे क्या दे दो, आपने जरूर चंदन लाया होगा, तिलक जो हम यूज करते हैं कहाँ से आता है, ये गोपी चंदन है, अब द्वारका में एक ऐसे पहाड़ हैं तो वहाँ से गोपी चंदन निकालते हैं और इसका मिट्टी फिर लाया जाता है और डिवोटीज यूज करते हैं, जो हम धारण करते हैं ये जो सफ़ेद मिट्टी है भगवान और गोपियों के चरण कमलों की वहाँ की द्वारका की। तो उन्होंने कहा कि आपने जरूर गोपी चंदन लाया होगा या तिलक लाया होगा, आप मुझे वो दे दो। तो हाँ कहते हमने तो लाए, और बड़े बड़े उन्होंने वो लाए थे, क्या कहते हैं, छोटे से पत्थर जैसे ना, बिग बिग साइज, हाँ स्टोन जैसे लाए थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हमें देना चाहिए वो दे दीजिए, कोई भी गोपी जो चंदन है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ठेला था चंदन का, बड़ा सा पीस। तो कहते हैं कि आप ये ले लो। तो 50 लोग लगे उसको उठाने के लिए, वो चंदन को, हाँ तिलक की मिट्टी को। तो कोई भी नहीं उठा पा रहा था उनके लोग। तो लेकिन ये जो मध्वाचार्य गए और आपने ये हाथ में ऐसे उठा लिया, ऐसे उठाया और लेके आया आपने यहाँ, और चलने लगे अपने गांव की ओर। और चलने लगे तो रास्ते में एक गांव आता है, तो वो ठेला आधा टूट गया, आधा टूट के उसमें से बलराम का डीटी निकला। और बलराम का डीटी निकला तो मध्वाचार्य बहुत खुश होते हैं, और मध्वाचार्य फिर उसी गांव में बलराम की स्थापना करते हैं। और फिर जैसे वो आगे चलते बाकी ठेला लेकर, और अपने उडुपी में आते हैं। हाँ उडुपी में आते हैं, तो जैसे वो ठेला रखते हैं, वो जो मिट्टी था चंदन का, तो वो टूट जाता है, तो उनमें से कृष्ण निकलते हैं, कृष्ण का डीटी। तो जिन जो उन कृष्ण बहुत फेमस, अब वो कृष्ण कौन से थे कि ऐसे कृष्ण थे जो हाथ में एक रस्सी लिए हुए थे और दूसरे हाथ में डंडा लिए हुए थे, मतलब ग्वाल बाल गवों के बछड़ों के पीछे जो कृष्ण जाते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं स्टिक और हाथ में रस्सी लेते हैं। तो इस मुद्रा में जो कृष्ण हैं वो कृष्ण उस चंदन के ठेले से प्रकट होते हैं, और वो उनको ले जाते हैं आगे और उनकी स्थापना करते हैं। और स्थापना करने के बाद इतना स्ट्रिक्ट डेटी वर्शिप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको षोडश उपचार कहते हैं। जैसे हम जो भी डेटी वर्शिप करते हैं वो षोडश उपचार विधि है, हाँ 16 प्रकार से भगवान की उपासना की जाती है, या 64 षोडश, हाँ 64 है, 64 अंगाज है भगवान की उपासना के। तो ये मध्वाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया था नारद जी, जो नारद जी ने पंचरात्रिक विधि के अनुसार उनकी पूजा करते थे। और मध्वाचार्य इतने स्ट्रिक्ट थे, और भगवान के वात्सल्य रस में थे ये, कौन से रस में, वात्सल्य, वात्सल्य रस में मध्वाचार्य थे। और ये दिन में या पूरे 24 घंटे में केवल 1.5 घंटे के लिए सोते थे बस, बाकी समय फुल्ली कृष्ण की हर एक प्रकार की सेवा में वो लगे रहते थे। और पूजा पद्धति इनकी इतने स्ट्रिक्ट थी जो मध्वाचार्य ने इंट्रोड्यूस किए थे, और जिनका पालन या इस एक गुण को मध्वाचार्य संप्रदाय के ब्रह्म मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज़ें ली थी, उनमें से ये एक चीज़ है, एक ली थी मायावाद का खंडन, और दूसरी चीज़ महाप्रभु ने ली थी डेटी वर्शिप, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गौड़िया इसमें डाली, गौड़िया सिद्धांत में। ये 2 चीज़ें मध्वाचार्य के संप्रदाय से ली हैं। तो मध्वाचार्य इतने स्ट्रिक्ट थे डेटी वर्शिप में कि भगवान की पूजा के लिए जो जल यूज़ किया जाता है उसका नाखून का भी स्पर्श हो जाए तो वो यूज़ नहीं करते थे, इतना स्ट्रिक्ट। और बाकी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ेंगे, डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई, हाँ क्योंकि भावना क्या होती है डीटी वर्शिप, हम राधा कृष्ण को नहीं उपास पूजा कर रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। राधा कृष्ण की पूजा ऐसे नहीं की जाती जैसे हम कर रहे हैं। प्रभुपाद भी कहते वी आर नॉट वर्शिपिंग राधा कृष्ण, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू वर्शिप राधा कृष्ण, हाँ क्योंकि राधा कृष्ण को एव एंड रेवरेंस, क्या कहते हैं उसका, ऐश्वर्य से नहीं कर सकते राधा कृष्ण की उपासना, जो वृंदावन में होती है। कैसे, रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न वाकल्पिता, महाप्रभु का यह मत है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण की उपासना तो वैसी होती है जैसे गोपियों ने वृंदावन में की थी, वह है उनकी उपासना, उनके लिए सब नहीं है आरती एंड कृष्णा कृष्णा। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वी आर नॉट क्वालिफाइड, हाँ तो हम अभी इस मूड से कि लक्ष्मी नारायण है, और ऐसी ऐश्वर्य में पूजा कौन स्वीकार करते हैं, लक्ष्मी नारायण स्वीकार करते हैं। तो धीरे धीरे वो मूड डेवलप करने के लिए इस भावना को प्रकट करते हैं। नहीं एक्चुअली क्योंकि
फोकस
नहीं है,
तो
ये भावना, क्योंकि अन्यथा कई प्रकार के अपराध होंगे और जिसके कारण बाधा होगी आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए ये विधि प्रभुपाद क्या परपट से पढ़ोगे ना, काफ़ी चीज़ें प्रभुपाद कहते हैं इस विषय पर। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने ये स्थापित किया, उस समय अपना श्री कृष्ण मठ स्थापित किया और इस विधि को इंट्रोड्यूस किया। तो ये डीटी आया कैसे था एक्चुअली, या अचानक इस मिट्टी में कैसे चला गया, या द्वारका में ये विग्रह कैसे था, ये भगवान के बाल्यावस्था का। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो जो देवकी और वसुदेव जितने भाग्यशाली नहीं हैं, उतने ज्यादा भाग्यशाली यशोदा और नंद महाराज हैं। तो यशोदा नंद महाराज इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की सारी बाल लीलाओं को अपने आंखों से देखा है और उनमें भाग लिया है, और इतने ज्यादा आसक्त थे यशोदा और नंद महाराज। जब कृष्ण ने वो वृंदावन छोड़ा तो कृष्ण ने एक ही चीज उनको जीवित, एक ही चीज ने जीवित रखा था ब्रजवासियों को, और उनका इतना असीम प्रेम था कृष्ण पर कि दूसरी और कोई चीज उनका प्राण नहीं थी, और कृष्ण ने एक ही चीज बस बोले थे जिसके कारण ये सब जीवित थे। कृष्ण जब अक्रूर आए थे, गोपिया कहते हैं इनका नाम तो अक्रूर है, अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रूर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को ले जा रहे हैं हमसे दूर, तो अक्रूर जी तो ले गए, तो लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं वापस आऊंगा। क्या कहा? बस इतना फेथ। इन्होंने कहा ब्रज में जाऊंगा, अभी चलते मथुरा, वो इन्होंने कहा चलते मथुरा। यह है चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग, क्या है कि यूनियन मतलब भगवान से मिलने में जितना आनंद नहीं है, जितना आनंद क्या है, सेपरेशन। ये टीचिंग है, ये हम सीखना है। आप शिक्षाष्टक हम गाते हैं तो उसमें ये दो चीजें हैं, भगवान से लव कितनी मात्रा में है हमारा चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम्स और इंटरनल सिम्टम्स हमारे, हम क्या चेक करेंगे ये तो बहुत। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितम तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और दूसरा एक श्लोक है ना, शून्यायतम जगत सर्व की शुरुआत क्या है, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरमेन में। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में ये लक्षण बताते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल उन्नत डिवोटी के। तो एक्सटर्नल क्या है? कोई कहता है, कोई कई बार कहते हैं बहुत अच्छा जाप हुआ, अच्छा जाप होता तो यहाँ नहीं होता इस वर्ल्ड में। अच्छा जाप का मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या फिर तो महाप्रभु के एक्सटर्नल जो लक्षण वो क्या है, नयनम गलदश्रुधारया चक्षुषा प्रावृषायतम, चक्षुओं से क्या हो रहा है, आंखों की धारा बहती जा रही है कृष्ण आपके विरह में, और सारा जगत कैसे लग रहा है, शून्यायतम मतलब भगवान से विरह। होता है विरह नहीं, प्रसाद से विरह, माया से विरह, फैमिली मेंबर से विरह। तो हमारा इतना विरह, तो वी हैव टू चेक, हम चेक कर सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो जब ब्रजवासी की इतनी बुरी हालत थी कि कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा, बस ये एक शब्द उनका प्राण रख रहे थे क्या, और डेली उठते थे नंद महाराज, यशोदा, गोपीज, और मथुरा से जो रास्ता आता था पूरा डेकोरेट करते थे, गोबर से आंगन सजा देते थे, सुबह सुबह फूल लगाते थे, दिया जलाते थे, रंगोली बनाते थे, और एक भी दिन मिस नहीं किया। ये है अटैचमेंट एंड लव एक्चुअली, हाँ ये है। हाँ वो उद्धव जब जाते हैं कृष्णा बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे था इनका जो प्रेम है, एक ही दिन मिस नहीं कि कृष्ण आएंगे, जस्ट कृष्ण ने बोला था। हाँ तो वो श्रद्धा बहुत है एक्चुअली। उन्नति का मतलब क्या है, कि आपका कितना श्रद्धा के लेवल बढ़ रहे हैं। श्रद्धा के अनुसार ही तो होते हैं कनिष्ठ, मध्यम और उन्नत। हाँ, श्रद्धा के अनुसार ही, हाँ अनुसार। चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा के अनुसार ही तीन लेवल बनते हैं। तो जब ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार से तैयारी करते थे और दिन भर केवल कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण आएंगे उनके लिए और प्रसाद भी। गोपिया ना यशोदा के घर में जाकर श्रीमती राधा रानी वगैरह कुकिंग करके रखते थे, भोग लगा के रखते थे विष्णु के शालिग्राम शिलाजार उनको, हाँ विष्णु डेटीज को, और वेट करते थे कृष्ण के लिए, तभी भी नहीं आते थे कृष्ण। तो इतना अनुराग था, तो इतना अटैचमेंट उनका था। तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजामि हम, भजामि में मैं भी भजन करता हूँ। कृष्ण भी क्या करते हैं, भजन करते हैं अपने भक्त का, और भक्त भी भगवान का भजन करता है। तो लेकिन ये जब बात कृष्ण द्वारका में चले आए मथुरा से, तो द्वारका में आकर कृष्ण से रहा नहीं जाता था, वो रोते रहते थे रात को। रुक्मिणी के जब सोते थे तो देखते थे कृष्ण रात को सपने में रो रहे, ओ मदर यशोदा, ओ श्रीमती राधा रानी, हाँ ओ नंद महाराज। रुक्मिणी कहते थे क्या हो गया, हम इतनी सेवा कर रहे हैं इनके नज़दीक, हमसे कोई प्रेम अनुराग नहीं है। इनका जो प्रेम अनुराग ब्रजवासियों के प्रति है, इतना सेवा। ब्रजवासी क्या करते हैं, उनको श्लोका क्लास थोड़ी सुनाते, श्लोका चांट कर रहे, अभी आया है वर्णन की स्तुतियां कर रही थी मदर यशोदा कृष्ण की, हाँ नहीं, वो क्या करते थे, सर्व सेवा करते थे हर एक प्रकार से। जैसे आज बताया ना उन्होंने, क्या डेडिकेशन के एक लास्ट सेंटेंस बताया था गोपी परानंद ने, सर्विस डेडिकेशन क्या था वो, हाँ कृष्णा प्लेजर, हाँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए डेडिकेशन। तो वैसे ये ब्रजवासी थे और कृष्ण को भी बहुत अनुराग था, और तो ये देखा कि कृष्ण को बहुत अनुराग उन लोगों के प्रति है। तो द्वारका में तो फिर यश देवकी और वसुदेव भी रहते थे, रुक्मिणी और 16108 रानियां भी रहती थी। तो एक दिन इन्होंने, देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने तो सुना है कि आपकी बहुत जो दिव्य लीलाएं हुई हैं वहाँ, और मैं भी चाहती हूँ आपके बाल रूप को देखना, जो आप गवों को चरा रहे हो, मक्खन चुरा रहे हो, ये सारी लीलाएं। तो देवकी को भी लगा कि मैं तो भाग्यशाली नहीं थी, मैं तो जेल में थी, हाँ यशोदा मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। तो कृष्ण के हाँ कहते अपनी माँ को, और द्वारका में उनके महल में क्या करते, कृष्ण छोटे बच्चे का फॉर्म लेते हैं, हाँ, और वो हाथ में वो रस्सी और डंडा लेके और सारी लीलाएँ वहाँ अपने आप प्रकट करते हैं। तो इस फॉर्म में किसी ने नहीं देखा था द्वारका में कृष्ण को, छोटे से बालक। तो ये इसने देखा था देवकी ने, और फर्स्ट फ्लोर में रुक्मिणी खड़ी थी, उसने भी देखा कृष्ण के इस छोटे से फॉर्म को। तो फिर रुक्मिणी ने कहा कि हे कृष्ण को कहा कि मुझे इस फॉर्म की पूजा करनी है। तो कृष्ण स्वयं इनको बुलाते हैं, विश्वामित्र, विश्वामित्र जो आर्किटेक्चर है देवगढ़, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को बुलाते हैं, और ये जो उडुपी कृष्णा है विश्वकर्मा बनाते हैं अपने हाथ से, और ये उनको दी जाती है, किनको, रुक्मिणी को। और रुक्मिणी कई साल इस डेटी की पूजा करती थी डेली, बाल कृष्ण के जो मध्वाचार्य को जो चंदन से मिले। और जब भगवान अप्रकट हो गए, हाँ, और फिर अर्जुन आया और द्वारका से सारे रानियों को लेकर ब्रज लेके आए, सारी रानियों को वृंदावन ले आए, तो उस समय ये जो डेटीज थी ये सारी वहाँ इसमें चली गई मिट्टी में वगैरह उस स्थान में। तो फिर जब ये लोग जब खोद रहे होंगे तो उस चंदन के उस ढेले में वो जो प्राप्त हुई थी इनको डेटीज। तो इस प्रकार से ये स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान की हुई ये जो विग्रह है उडुपी कृष्ण, जिनकी उपासना मध्वाचार्य करते थे, और बहुत ही स्ट्रिक्टली मध्वाचार्य उनकी सेवा करते थे, हर समय दिन के केवल 1.5 घंटा छोड़कर ये अकेले पूजा करते थे। और आज भी आप जाएंगे, हर कोई डायरेक्ट नहीं जा सकता, उनके जो डिवोटीज हैं अंदर, कई साल के बाद किसी को संन्यास मिलता है वहाँ, और संन्यासियों में भी एक ऑथोराइज होता है जो उनके डिटीज की पूजा कर सकता है। हाँ, और उसमें भी 12 साल में एक बार वहाँ फेस्टिवल होता है जिसमें वो पुजारी नियुक्त किया जाता है उडुपी कृष्ण का। हाँ वही डिटीज है। लेकिन अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल, छोटे इतना सा होगा। नहीं, फोटोग्राफ देखे हैं नहीं नहीं उडुपी कृष्णा साउथ खड़े हैं कृष्णा, और जस्ट ऐसे उनके हाथ में डंडा और रोप है, ऐसे खड़े हैं। बाल कृष्ण हैं, मेरे पास होगा, मेरे किसी बुक में वो फोटो रखा था मैंने, मुझे वो डिवोटी ने दिया था वहाँ से। इस प्रकार से वो उनकी सेवा करते थे, और फिर ऐसी सेवा कई सालों में करने के बाद मध्वाचार्य को फिर से नई इच्छा होती है कि अभी मैंने काफ़ी सेवा की है और काफ़ी एक्टिविटीज़ की है, फिर से वो अपने जो इटरनल स्पिरिचुअल मास्टर है व्यासदेव को मिलने की इच्छा होती है। हाँ, फिर वो हिमालयस की ओर निकलने की सोचते हैं, और फिर कल हम सुनते हैं कि किस प्रकार जो मध्वाचार्य हैं गए अपने आध्यात्मिक गुरु को मिलने के लिए हिमालयाज में, और फिर उनकी कुछ छोटी छोटी लीलाएँ, और किस प्रकार वो अप्रकट हो गए इस भौतिक जगत से। तो इस प्रकार श्रीपद मध्वाचार्य से ये सीख सकते हैं सर्विंग। मध्वाचार्य का मिशन था मायावाद का खंडन और भगवान की सेवा करते थे फिजिकली, डिटी वर्शिप, क्योंकि बहुत कठिन होता है डिटी वर्शिप सेवा, इज हार्ड सेवा। ये डिटीज पहले वो वर्शिप करते थे, कृष्ण ने वो दी थी डिटीज, उन्होंने डिजायर की थी कि मुझे चाहिए इस बाल रूप को, मैं पूजा करनी चाहती हूँ, तो उन्होंने वो दी थी मध्वाचार्य, भगवान ने दी थी विश्वकर्मा को बुलाकर बनाकर वो डिटीज उनको, तो वो पूजा करते थे। रुक्मिणी ने नहीं देखी उनको तो, लेकिन जब भगवान अप्रकट हो गए और काफ़ी सारे यदूज यादवों ने एक दूसरे की हत्या कर दी ना, जो फाइट हुई थी अंतिम, यदुकुल का नाश किया था, सब शराब पीकर एक दूसरे को मार डाले सबको, तो श्रिया बची थी, तो उनको लेकर अर्जुन चले गए, ला रहे थे उनको हस्तिनापुर, वृंदावन ला रहे थे, तो उनको लेके आते हैं वृंदावन में, तो वो ड्यूटी वहीं रह गई थी जो मिट्टी में चली गई थी सारा ध्वस्त होने के बाद, तो वो फिर बाद में मिली, सोचो 800 साल पहले हम मध्वाचार्य को। तो मध्वाचार्य वात्सल्य रस के हैं, ये हैं वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते, इसलिए तो भगवान ने उनके लिए वो रूप अरेंज किया, बाल रूप है कि नहीं, बाल बाल कृष्ण। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद वो आते हैं ना आंध्र, आते हैं उडुपी आ जाते हैं, उडुपी आते हैं, और उडुपी में जब एक दिन शाम को निकलते हैं वो ट्रैवल कर, रात को समुद्र के किनारे कुछ प्रेयर्स गाते हुए, तब उनको डिटेल मिलते हैं। साउथ के नाम बड़े थोड़े रहते हैं सिटीज के ना, उडुपी, वजाका क्षेत्र, कुछ कुछ चीज़ें। हाँ, इन्होंने उडुपी कृष्ण की स्थापना, ऐसा वर्णन आता है कि इतने शक्तिशाली प्रचारक थे कि कई सारे राजाओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, बल्कि वो बहुत विशाल मंदिर बना सकते थे, लेकिन उडुपी कृष्ण मंदिर बहुत छोटा बनाया उन्होंने, छोटा ही रखा, और मेन सेंटर रखा सर्विंग, सेवा का भावना कृष्ण की। तो वहाँ भी ऐसे स्ट्रांग ब्रह्मचारीज हैं, अभी भी कई सारे उनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ भी ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यासीज हैं, और वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ है मध्वाचार्य के फॉलोअर्स का। चैतन्य महाप्रभु भी गए थे वहाँ, तत्ववादी कहा जाता है। हाँ, चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो आता है, काफ़ी एक चैप्टर ही है कन्वर्सेशन मध्वाचार्य से रिलेटेड महाप्रभु। बद्रीनाथ यहाँ से 6-7 घंटा, हरिद्वार के आगे ज़्यादा होगा, हाँ 12 घंटा होगा फिर यहाँ से, तो हरिद्वार 4-5-6 घंटा लगता है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी का लाइफ है।